मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अलहम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा, क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क़ुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون الى الاخر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो नायात की तफसीर पढ़ रहे थे हम मार्फुल कुरान में, पेज नंबर 540 पे पहुंच चुके थे। किसी वजह से था जिसके जहन से निकल गया कि निशान लगाना है कि एग्जैक्टली हमने किस लाइन तक पढ़ा था। तो हम रिकॉर्डिंग सुनने का मौका, बल्कि सच्ची बात यह है कि इस क्लास के लिए मुताला करने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन पहले किया हुआ था तो उसी की बुनियाद पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की क्लास पढ़ा दी जाए। तो अगर किसी को लाइन एग्जैक्टली याद है तो प्लीज़ बता दें ताकि ज़्यादा रिपीटेशन ना हो। थोड़ी बहुत समरी तो करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल ये जो आयात हैं इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुशरिकीन के उस फेल का जिक्र करते हैं कि ये लोग काबतुल्लाह का तवाफ जो है वो बेलिबासी की हालत में किया करते थे, और इसका जो इसकी जो वजह बताते थे उल्टी सीधी किस्म की। ठीक है, एक तो ये कि गुनाह के कपड़े होते हैं तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और अदब तो बड़ी सबसे ऊंची चीज़ होती है। ठीक है, तो इस किस्म की लॉजिक बयान करते थे, और यानी ये इसको कह सकते हैं एक तरह से अकली दलील है ना कि भाई अदब जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है, और गुनाह के कपड़ों के अंदर तवाफ करना जो है वो खिलाफ अदब है। तो इससे ये नतीजा निकला कि हमें लिबास के साथ तवाफ नहीं करना चाहिए। तो ये अकली दलील एक तरह की बन गई, और उसके ऊपर ना फिर ये नकली दलील भी देते थे। नकली दलील क्या कि जी अल्लाह ताला ने हुक्म ही ऐसा किया है ना, यही करने के लिए हमें कहा है, और ये कि हमारे बाप दादा भी इसी तरीके से किया करते थे, तो उनको भी अल्लाह ने हुक्म दिया था और हमने उनसे सीखा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अकली और नकली दोनों दलीलें जो हैं वो ये पेश करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से ये आयात नाजिल फरमाई कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सारे के सारे झूठे हो अव्वल नंबर के, और अल्लाह ताला जो है वो फोहश कामों का हुक्म नहीं किया करते। इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा। ठीक है, और तुम जो है ना अल्लाह ताला के ऊपर वो बातें इफ्तरा करते हो वो जो कि तुम्हें इल्म ही नहीं है उनका। तो ये बातें चल रही थी, तो पेज नंबर 541 के चलने पहले पैराग्राफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप में से तो किसी ने बताया नहीं कि कहाँ तक पढ़ा था, कोई बात नहीं। इन अच्छा, तो पहले पैराग्राफ में फरमाते हैं कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला कभी किसी फहश काम का हुक्म नहीं दिया करते, क्योंकि ऐसा हुक्म देना हिकमत और शान कुद्दूसी के खिलाफ है। ठीक है, कि जो नहीं जो भी बड़ा होता है, हकीम होता है और मुकद्दस होता है, शान कुद्दूसी है ना, मुकद्दस तकदीस वाला, तो वो कभी इस किस्म के हुक्म नहीं दिया करता। ठीक है, जो कि इंसानी फितरत के खिलाफ हो। सही है, तो फिर इन लोगों के इस बोहतान व इफ्तरा अल्लाह और बातिल ख्याल को पूरी तरह अदा करने के लिए इन लोगों को इस तरह तंबीह की गई कि अतकूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, यानी क्या तुम लोग अल्लाह ताला की तरफ ऐसी चीज़ों को मंसूब करते हो कि जिसका तुमको इल्म नहीं है, यानी जिसके यकीन करने के लिए तुम्हारे पास कोई हुज्जत नहीं है। ठीक है, पिछली क्लास में बात हो गई थी ना कि भी तुम्हें इल्म नहीं है का मतलब क्या है ना, ये तो नहीं है कि भी किसी ने अल्लाह की आवाज़ सुनी किसी ने नहीं सुनी तो तुमने कौन सी अल्लाह की आवाज़ सुनी, नहीं ये मतलब नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास कोई दलील कोई हुज्जत नहीं है। ठीक है, यानी कोई सनद नहीं है कि भाई अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है, तुम बिला सनद बातें करते हो, और नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो सनद के साथ बात करते हैं, और उस सनद के बारे में इस जुम्मे के अंदर बयान में ही जो सूरह नजम की बात करी थी, तो वो सनद भी है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम सनद है नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान, चेन ऑफ नरेशन है। अच्छा, तो तुम्हारे पास तो कोई सनद नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है, और जाहिर है कि बिला तहकीक किसी शख्स की तरफ भी किसी काम को मंसूब करना इंतहाई दलेरी और जुल्म है, ठीक है, खुसूसन बुरा काम किसी अच्छे की तरफ मंसूब करना, ठीक है। तो बुरा इतना तो समझते थे ना ये लोग इस बात को, बेलिबास तवाफ करने को इतना तो बुरा समझते थे ना कि औरतें रात को करती थीं। भाई रात को क्यों करती हो, अगर ये बहुत नेकी का काम है तो दिन में करो, खुल करके करो, लेकिन नहीं, बुरा तो समझते थे, ठीक है, लेकिन बुराई का इंतसाब जो है वो अल्लाह ताला के साथ करते थे, ठीक है। तो ये इंतहाई दलेरी और जुल्म है। तो अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ किसी नकल की ऐसी गलत नस्बत करना कितना बड़ा जुर्म और जुल्म होगा। हजरात मुज्तहिदीन आयात कुरानी से, अब ये अलग बात फरमा रहे हैं कि जो मुज्तहिदीन होते हैं आयात कुरानी से बजरिया इज्तिहाद जो अहकाम निकालते और बयान करते हैं वो इसमें दाखिल नहीं है, क्योंकि उनका इस्तेखराज यानी वो जो अहकाम खारिज करते हैं, डिड्यूस करते हैं कुरान और हदीस से, तो उनका जो इस्तेखराज होता है कुरान के अल्फाज और इरशादात से एक हुज्जत के मातहत होता है, यानी कुरान ही ने उनको ये दलील दी है कि तुम इसमें से यानी अहकामात जो है ना वो यानी इसमें से निकालो, ठीक है। ये जो है वो यानी इजमाए उम्मत यानी जिसको माखज़ शरीयत, चार माखज़ होते हैं ना, कुरान और दूसरा हदीस और दूसरा इजमाए उम्मत और चौथा कयास, ठीक है। तो उस के तहत जो है वो ये सारी आयात जो है वो बयान की जाती हैं कि कुरान ने खुद हुक्म दिया है उलमा को कि तुम अहकाम निकालो, तो वो लोग जो है वो गलत काम नहीं करते हैं। और फिर साथ साथ जब वो कोई कोई फतवा देते भी हैं तो साथ साथ ये भी बता देते हैं, ये भी फरमा देते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है। तो हर फतवे के आखिर में ये भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, यानी अल्लाह ताला की तरफ नंगे तवाफ करने के जायज़ करने की गलत नस्बत करने वाले जाहिलों से आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला तो हमेशा क़िस्त का हुक्म दिया करते हैं, क़िस्त के असली मानी इंसाफ और इतदाल के हैं, और इस जगह क़िस्त से मुराद वो अमल है जो इफरात और तफरीत से खाली हो, यानी ना इसमें कोताही हो ना मुकर्रर हद से तजावुज़ हो, जैसा कि तमाम अहकाम शरिया का यही हाल है। इसलिए लफ्ज़ क़िस्त के मफहूम में तमाम इबादात और ताआत और आम अहकाम शरईया दाखिल हैं, ठीक है। आपने किसी ने लिख भी दिया है कि हाँ ये सेकंड पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया था, ज़रा देर हो गई इनको लिखने में, और इस आजिस को भी अब याद आ रहा है कि हाँ ये बातें हो चुकी हैं। एक तो इज्तिहाद के बारे में भी शायद थोड़ी सी बात हुई थी और जाहिल के लफ्ज़ के बारे में भी बात हुई थी कि जाहिल का लफ्ज़ जो है ना वो दीनी उलूम से ना वाकिफ इंसान के लिए लफ्ज़ जाहिल इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीज़ जो है वो यानी ये मुहावरे का हिस्सा है, ठीक है, उलमा मदारिस में ये आम बोलचाल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो सेकुलर एजुकेटेड तबका होता है तो वहाँ पर जाहिल का लफ्ज़ जो है ना वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसको अंग्रेजी ना आती हो, जिसको चमचे कांटे से खाना खाना ना आता हो, और जिसको जो है वो थ्री पीस सूट पहनना ना आता हो, और इस तरह की चीज़ें जिसको ना आती हो तो वो जाहिल कहलाता है। तो इस वजह से ना वो तबका जो है वो इसको बहुत बड़ी अपने लिए गाली समझता है, ठीक है। तो जब उसको उलमा के मुंह से कभी जाहिल का लफ्ज़ सुनना पड़ता है ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं एकदम ना, बिल्कुल आग लग जाती है, ठीक है, कि अच्छा तुम्हें तुम्हारे पास ही खाली इल्म है और हम तो सारे के सारे जाहिल हैं, हमने तो PhD करी हुई है, हमने तो मास्टर्स किया हुआ है, हमने तो ये किया हुआ है वो किया हुआ है, और तुम हमें जाहिल कह रहे हो, ठीक है। तो वो बड़ा गुस्सा आता है फिर उन लोगों को, लेकिन वो बिल्कुल ना मुहावरों की डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है कि वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट यानी अंदाज में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, इस आयत में किस्त यानी इंसाफ और एतदाल का हुक्म बयान करने के बाद इन लोगों की गुमराही और बेराही के मुनासिब अहकाम शरईया से दो हुक्म खसूसियत के साथ बयान फरमाए गए हैं। एक तो अकीमू वुजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ये भी शायद पढ़ लिया था, तो पहला हुक्म जो बयान किया गया है वो ये है, और दूसरा वदउहू मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी हुक्म پہلا حکم انسان کے ظاہری افعال سے متعلق ہے، اقیم وجوہکم عند کل مسجد، اور دوسرا اس کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتا ہے، مخلصین، اخلاص. ٹھیک ہے، تو اخلاص جو ہے وہ تو نیت والا معاملہ ہوتا ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کا فعل ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے دوسرا حکم جو ہے وہ قلب اور باطن سے تعلق رکھتا ہے. پہلا آہستہ آہستہ آپ کر کے بتا رہی ہیں تو رہنے دیں اس کو. چلیں، پہلے حکم میں لفظ مسجد اکثر مفسرین کے نزدیک بمانے سجدہ و عبادات کے عبادت کے آیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر عبادت نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو. اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا ٹھیک قبلے کی طرف کرنے کا اہتمام کرو. اور رخ سیدھا کرنے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہر قول و فعل اور ہر عمل میں اپنا رخ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اس سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے. اس معنی کے لحاظ سے یہ حکم صرف نماز کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام عبادات و معاملات پر حاوی ہے. چلیں، یہ بھی پچھلے ہفتے پڑھ چکے تھے یقیناً. اور دوسرے حکم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو کہ عبادت خالص اسی کی ہو، اس میں کسی دوسرے کی شرکت کسی حیثیت سے نہ ہو، یہاں تک کہ شرک خفی یعنی ریا و نمود سے بھی پاک ہو. ان دونوں حکموں کو ساتھ ذکر کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کو احکام شریعت کے مطابق درست کرے. نہ صرف ظاہری اطاعت بغیر اخلاص کے کافی ہے، اور نہ محض اخلاص باطنی بغیر ظاہری اتباع شریعت کے کافی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق درست کرے اور باطن کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھے. اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کو مختلف طریقے سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ طریقت کے مطابق باطن کو درست کر لینا کافی ہے، گو شریعت کے خلاف کرتے رہیں، یہ کھلی گمراہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت نے اس والے طبقے کا ذکر کیا کہ جو کہ طریقت یعنی تصوف کے کسی سلسلے میں بیعت ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور شیخ سے جو ہے وہ ذکر مراقبہ وغیرہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ جو شریعت کے احکامات علماء کرام جو بتاتے ہیں تو ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف وہ بھی طبقہ ہے جو کہ علماء کی حد تک تو دین پہ یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے، علماء سے جڑا ہوا ہے، مدارس جس کو کہتے ہیں، یعنی علماء کا تعلق مدارس سے ہوتا ہے، تو مدارس سے جڑا ہوا ہے یا علماء سے جڑا ہوا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے. یا یہ کہ جیسے دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تین روز تین دن کا چلہ بھی لگا رہے ہیں، 40 دن کا چلہ بھی لگا رہے ہیں، 4 مہینے کا چلہ بھی لگا رہے ہیں، اور وہ سارے اعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری محنت کون سی ہوتی ہے؟ اقامت دین کی محنت. ٹھیک ہے، یعنی مدارس کی محنت، تبلیغی جماعت کی محنت، پھر تیسری اقامت دین کی محنت. جیسے کہ کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دینی سیاسی تنظیم، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، یا جو ہے وہ کوئی اور اس قسم کی صحابہ وغیرہ کی شان کے لیے جو تنظیمیں وغیرہ ہیں، وہ ساری تنظیمیں ہو، یہ ساری اقامت دین کی تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یعنی ان تین میں سے کسی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تصوف کی محنت کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ تو بس خامخواہ جو ہے نا وہ بس ذکر مراقبے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، تو ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خامخواہ کا ایک افیون ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو امت کو ایک نا افیون کھلا دیتے ہیں کہ بس مراقبے کرو اور سو جاؤ. ٹھیک ہے نا، اور بس اپنے آپ کو ہر چیز سے لا تعلق کر لو. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی سوچ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی بھی سوچ غلط ہے، دونوں طرف کی اگر یہ سوچ ہے تو غلط ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن ہر انسان جو ہوتا ہے اس کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، الگ مزاج ہوتا ہے، اور ہر انسان کی کیپیسٹی اور استعداد بھی مختلف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ذکر مراقبے بھی لمبے لمبے کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کے اندر بھی نکلا کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عالم کورس بھی کر رہا ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقامت دین کی بھی کسی تنظیم کے اندر جڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے، ایک بندے کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ ہر بندہ سارے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بنیاد کی تعلق بنیاد کا معاملہ ہے کہ بھئی آپ اپنے جو آپ اعمال کر رہے ہیں تو ان اعمال کے اندر آپ کی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی ہے، یہ تو ہر بندے کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں استعداد نہیں دیکھی جاتی کہ بھئی اس کی تو استعداد ہی نہیں ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے، या इसकी तो इस्तेदाद ही नहीं है कि अपने अमाल को सुन्नत के मुताबिक बनाए, ये इसमें इस्तेदाद वाला मामला नहीं चलता। इसमें तो हर बंदे को सुन्नत के मुताबिक ज़ाहरी अमाल बनाने और सुन्नत के मुताबिक अपने दिल की नीयत बनानी, ये हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है कि दोनों काम करने हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है। अलबत्ता मेहनतों की शक्लें जो हैं, जो तंजीमी शक्लें होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, वो हर बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा आखिर आयत में इरशाद फरमाया कमा बदअकुम तऊदून, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हें अव्वल पैदा फरमाया था इसी तरह कयामत के रोज दोबारा तुम्हें जिंदा करके खड़ा कर देंगे। इसकी कुदरत कामिला के आगे ये कोई मुश्किल चीज नहीं, और शायद इसी आसानी की तरफ इशारा करने के लिए युईदुकुम के बजाय तऊदून फरमाया कि दोबारा पैदा होने के लिए किसी खास अमल व सई की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यानी तुम्हें जो है ना वो इआदा युईदु कि तुम्हें जो है वो लौटाने के लिए अल्लाह ताला को कोई खास मेहनत वेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को जो है वो खींच करके वापस लेकर के आना, इससे एक जहन में ख्याल पैदा होता है कि हाँ भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इस काम करने के लिए इनको। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने युईदुकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि तऊदून यानी बस तुम्हें जिंदा करके खड़ा कर देंगे, आधा यहूदू तुम खड़े हो जाओगे बस। ठीक है, तो बहुत ही आसान है अल्लाह ताला के लिए ये। तो जैसे कि ये अच्छा यही वो आयत का टुकड़ा है कि जिसकी बुनियाद पर ना ये आजिज पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो ये बात क्लासेस में और बयानात के अंदर कर रहा है कि उस जमाने के लोगों को जो है ना इस बात की याद दिलानी पड़ती थी कि तुम मरने के बाद जिंदा किए जाओगे। ठीक है, और हमें किस बात की याद दिलानी पड़ती है, हमें याद दिलानी पड़ती है यानी इस बात की याद दिलानी पड़ती है कि तुमने मरना है। ठीक है ना, अब ये फर्क क्यों है, किस वजह से हमारी हमारी हालत ये हो गई कि हम मरने को भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसकी भी बात बड़ी आसानी से समझ में आती है कि उस जमाने में शायद यानी वजह शायद ये थी कि यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक चीज होती है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितने लोग जो है वो यानी जिंदा रहते हैं और कितना लंबा जिंदा रहते हैं। लेकिन आजकल बाकायदा इसके मेजर्स होते हैं कि जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी बड़ी इंक्रीज हो गई है, लोगों की उम्रें लंबी होनी शुरू हो गई हैं। यानी उम्रें लंबी तो उतनी तो नहीं होती, 300 साल वाली लंबी नहीं होती, लेकिन कम उम्र के अंदर वफात जो है ना वो बड़ी कम कम हो गई है। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के मौके पर, ये तो माशाल्लाह सारी खवातीन का मुशाहिदा और तजुर्बा रहा होगा कि चाइल्ड बर्थ के मौके के ऊपर जो अमवात पहले हुआ करती थी, जितनी अमवात हुआ करती थी, अब जो है वो नहीं होती है। ठीक है ना, पहले तो यानी ये हाल होता था कि जब कोई कोई औरत एक्सपेक्ट करती थी ना, तो ऐसा होता था कि बस ये तो यानी हो सकता है इस औरत की जान ही चली जाएगी बच्चे की पैदाइश के इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और होता भी ऐसे ही था, बच्चे की भी वफात बहुत ज्यादा होती थी और माँ की भी बहुत ज्यादा वफात हो जाती थी इस मामले में, इसी के अंदर। ठीक है, लेकिन अब जो है आप देखें कि जो मेडिकल साइंस ने तरक्की करी है और सर्जरी के जरिए से जो कि सी सेक्शन जिसको कहते हैं, तो अब ये यानी ये अजम्पशन होती है कि कोई कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, मुश्किल से मुश्किल भी अगर केस होगा ना तो वो भी जो है ना वो किसी तरीके से हैंडल कर लिया जाएगा और माँ की सेहत को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा से ज्यादा जो है वो कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी जो है वो वक्त के साथ अक्सर लोगों के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अमवात जो है वो इस उम्र से लेकर के यानी घटनी शुरू हो गई ना, उसी तरीके से जवानी की जो मौतें होती थी, तो वो भी पुराने जमाने में जो जंगों का मामला होता था, हर थोड़े दिन के बाद जो है ना वो उधर से लश्कर ने अटैक कर दिया, उधर से जो है वो डिफेंड करने के लिए लश्कर को भेजना पड़ा और यानी उसके अंदर बहुत सारे मर्दों की जो नौजवानों की अमवात होती थी। ठीक है, अब जो है वो स्टैंडिंग आर्मीज हैं। ठीक है ना, अब अमवात होती हैं तो दुनिया के किसी एक जगह पर जो है ना वो जहाँ पे बहुत ज्यादा फितना फसाद और जंग लड़ाई कहीं पर हो रही होती है तो वहां पर हो रही होती हैं और अक्सर जगहों पर नहीं हो रही होती हैं। स्पेशली जो है जब से ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह डेवलप हुए हैं तो कन्वेंशनल वॉरफेयर तो वैसे ही लोग डर के मारे जो है वो कुछ नहीं करते, है ना, कि भाई वो कहीं आगे से एटम बम फेंक दें उठा करके वो। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल वॉर्स भी खत्म हो गई। तो इस वजह से ना ये जो मरने का जो एक एक कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इससे अक्सर लोग जो है ना, एक तो यानी हमारा वास्ता नहीं पड़ता इनसे, बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा पड़ता है। ठीक है, अच्छा जो थोड़ा थोड़ा वास्ता पड़ता है हमारा अमवात से, है ना, वही किसी के खानदान में किसी का इंतकाल हो गया और कहीं पे जो है ना वो किसी के कोरोना से डेथ हो गई, तो किसी के फलाने से डेथ हो गई, तो ये जो थोड़े थोड़े से जो हमें वास्ते पड़ते हैं ना, तो इन वास्तों को भी हमारे जहनों से मिटा देने के लिए, मुंदमिल कर देने के लिए इतने साजो सामान मौजूद है, इतने जराए मौजूद हैं, जिनमें सबसे बढ़कर के जो है वो ये टेलीविजन, चाहे वो यूट्यूब की शक्ल में हो, चाहे वो सैटेलाइट डिश की शक्ल में हो, ये टेलीविजन टाइप की जो चीजें होती हैं, मीडिया और उसके ऊपर बढ़ के सोशल मीडिया, ये इनके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि आपके जहन को जो है ना वो बिल्कुल यानी माउफ कर दें, नंब कर दें, जैसे कि वो एनेस्थीजिया लगाते हैं ना, एनेस्थीजिया लगाने से बंदे का जिस्म जो है वो नंब हो जाता है ना, अब उसको कोई किसी चीज का एहसास नहीं रहता, उसी तरीके से ये टेलीविजन टाइप की जो चीज होती है ना, ये इंसान के जहन को नंब कर देती है, बिल्कुल माउफ कर देती है। अब उसके सामने कोई बंदा मर भी रहा हो ना, उसको कुछ कोई कोई परवाह नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी। ठीक है, पहले ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी, और पहले अमवात की तादाद भी ज्यादा हो रही होती थी, जिससे लोगों को एक्सपोजर होता था। ठीक है, तो उनका मसला ये नहीं था कि उनको मरने का कोई फिक्र नहीं होती थी, उनको ये फिक्र नहीं होती थी कि जो मरने के बाद उठाना नहीं है। ठीक है, हमारा मसला मरने का मसला पैदा हो गया। अब तो जो है ना वो कोई 80, 90, 100 साल का भी बूढ़ा होगा ना, तो वो ऐसे ट्रीट कर रहा, अनलेस के कोई कुछ बहुत ही अल्लाह का वली हो, वरना तो वो ऐसे रह रहा होगा कि जैसे अभी तो उसने 100 साल और जीना है। ठीक है, और जब जवान होते हैं तो जवानों ने तो फिर वो मरने के लिए तो पैदा हो थोड़ी हुए हैं, हम तो जीने के लिए पैदा हुए हैं, है ना, हम तो इसी दुनिया के लिए पैदा हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, और इस डायलेमा का इलाज जो है ना, वो जब आपने मर्ज को डायग्नोज कर लिया, अगर सही तरीके से समझ में आ गई बात, तो इसका इलाज भी जो है वो भी डायग्नोज करना बड़ा आसान काम है। ठीक है ना, कि भाई आप इसी चीज को रिवर्स कर दें, जिन चीजों की जो जो आपको माउफ कर रही हैं, जो आपके जहन को माउफ कर रही हैं चीजें, टेलीविजन, यूट्यूब, आजकल वो क्या वो वीडियो लॉगिंग, वी लॉगिंग लोगों ने जो शुरू करी हुई है ना, तो इनसे आप अपने आप को कट ऑफ करें, फेसबुक से, ट्विटर से, और स्नैपचैट से, और पता नहीं क्या क्या अला बला दुनिया के अंदर बनाई हुई है लोगों ने, है ना, उनसे अपने आप को काटें। ठीक है, ताकि आपका जहन की जो माउफ वाला जो जो एक सिस्टम चल रहा है वो खत्म हो आपका। और दूसरी चीज क्या है कि रिमाइंडर्स के सिस्टम से अपने आप को जोड़ें, मौत की रिमाइंडर्स जहां से मिलते हैं, कुरान, सुन्नत, नेकों की महफिलें, इनसे अपने आप को जोड़ें। ठीक है ना, तो अगरचे कि आपके सामने बंदे मरते और गिरते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे। तो ये दोनों हल भी हमारे सामने मौजूद हैं, अब हमारे पास ये चॉइस है कि हम इन ये जो हल है इसको अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसी बुनियाद पर हमारे जजा और सजा के फैसले भी होते हैं। इस जुमले को इस जगह लाने का एक फायदा यह भी है कि अहकाम शरिया पर पूरी तरह कायम रहना इंसान के लिए आसान हो जाए, क्योंकि आलम आखिरत और कयामत और इसमें अच्छे बुरे आमाल की जजा और सजा का तस्वुर ही वो चीज़ है जो इंसान के लिए हर मुश्किल को आसान और हर तकलीफ को राहत बना सकती है। और तजुर्बा शाहिद है कि जब तक इंसान पर ये खौफ मुसल्लत ना हो, ना कोई वाजो पंद उसको सीधा कर सकता है, और ना किसी कानून की पाबंदी उसको जराइम से रोक सकती है। ठीक है ना, जिसको मरने का कोई खौफ ना हो या हिसाब किताब का कोई फिक्र ना हो, तो अब आप उसको दुनिया के सबसे बड़े वली के सामने बिठा दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और उसी तरीके से आप कवानीन जो है वो नाफिज कर दें, जैसे कि यूरोप में, अमेरिका के अंदर जो है वो कवानीन बड़े एक से एक करके उन्होंने बनाए हुए हैं, और बड़ी पुलिस फोर्स और सर्वेलेंस और न जाने क्या क्या सारी चीजें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जराइम जो है ना वो उनकी, आप अगर उनके उनकी नौइयत को अगर आप पढ़ें, यूरोप और अमेरिका में जिस उनके ये जो अच्छे अच्छे गोरे प्रोफेशनल पढ़े लिखे जिस किस्म के वो जराइम होते हैं, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा जरा सा जा करके चेक कर लें कि वहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो उन कवानीन में कोई फायदा नहीं होता। तीसरी आयत में फरमाया कि बाज लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत की है اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق اور دوست بنا لیا اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا، تو بھائی جو بہت زیادہ برے گندے لوگ ہوتے ہیں نا، تو خالی وہ شیطانوں کو دوست بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ایسی حرکتیں، جیسے وہ جادوگروں کی بات ہوئی تھی نا ابھی پچھلے دنوں بچوں کی کلاس میں بھی، اور جو 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 نجومی والا کام کرتے ہیں، کاہن جو لوگ ہوتے ہیں، جادوگر لوگ ہوتے ہیں، وہ شیطانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ باقی تو ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ کے خاندان کے اندر، ہیں چاہے وہ آپ کی بہو ہو، چاہے وہ آپ کی ساس ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہو، تو انہوں نے تو کوئی شیطان کو دوست نہیں بنایا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے ان سر ساری باتوں کا؟ اللہ کو چھوڑ کے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ جنوں کی شکل میں ہو چاہے انسانوں کی شکل میں ہو، تو ان کی بات مانتے ہیں اور اللہ والوں کی بات نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ہدایت عام تھی، مگر ان لوگوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا اور شیطانوں کا اتباع کرنے لگے، اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ یہ اپنی بیماری ہی کو صحت اور گمراہی کو ہدایت خیال کرنے لگے۔ جب گمراہی بڑھ جاتی ہے تو گمراہی کو ہی ہدایت اختیار کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے پچھلے ہفتے کا، پچھلے جمعے کا بیان سنا ہو، تو ساجد نے وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے چار مرحلے بتائے ہیں، تو ان میں سب سے آخری مرحلہ کیا تھا کہ جو یعنی برائی کو جو ہے وہ نیکی سمجھنا شروع کر دو گے، اور نیکی کو برائی سمجھنا شروع کر دو گے، یہ آخری درجہ تھا فتنے کا۔ پہلا درجہ عمل کا فساد تھا، اور آخری درجہ جو ہے وہ عقیدے اور ایمان کا فساد تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ دوبارہ سے ہوا ہوا ہے، اس دور زمان کے اندر بھی یہی حال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت عام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جو ذرائع ہیں نا وہ ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور پہلے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ سے جہل اور ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک شخص اگر غلط راستے کو صحیح سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اختیار کر لے، تو وہ اللہ کے نزدیک معذور نہیں ہوگا۔ پورے اخلاص کے ساتھ کہ جی میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، بہت سارے غیر مسلم جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کے اس اخلاص کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے نفس کی جو ہے وہ بھی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ تو نہیں بلکہ نفس کی پرستش کے ضمن میں وہ ان بتوں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ معذور نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ اخلاص بھی اخلاص نہیں ہے۔ اصل ہدایت عام ہے لیکن طلب پر ملے گی، ہاں ہدایت عام ہے لیکن طلب پر ملے گی، یعنی یہ کہ یعنی آپ تک موجود پہنچ تو ہوتی ہے ہدایت کی، لیکن آپ کو ملے گی وہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس کو حاصل کرنے کی طلب اپنے ذہن میں ہوگی، تب یعنی دل میں ہوگی، تبھی آپ کو ہدایت ملے گی نا۔ یعنی کہ وہ آپ طلب کریں گے تو ہدایت جو ہے وہ کہیں مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں آنٹی ہدایت، اور ہدایت آنٹی پھر وہاں سے چلتی ہوئی آ جائیں گی آپ کے پاس جب آپ طلب کریں گے۔ نہیں، ہدایت کے ذرائع آپ کے پاس آپ کے خاندان میں موجود ہوں گے، آپ جس بلڈنگ میں رہتی ہیں اس بلڈنگ میں موجود ہوں گے، آپ کے محلے میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تک جو ہے نا وہ آپ کو اپروچ تو کرنا پڑے گا۔ اب آپ نہیں اپروچ کریں تو آپ یعنی برابر والے گھر میں رہتے ہوں، آپ کو تو نہیں ملنے والی ہے نا۔ تو ہدایت آنٹی کا یہی معاملہ ہے۔ ایک آنٹی ہوتی بھی تھی ہماری کلاس میں پہلے، ہدایت آنٹی، یاد آ گیا، ان کی یاد آ گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ سے جہل اور ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک شخص اگر غلط راستے کو صحیح سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اختیار کر لے، تو وہ اللہ کے نزدیک معذور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہوش و حواس اور عقل و دانش اسی لیے دی ہے کہ وہ اس سے کام لے کر کھرے کھوٹے اور غلط صحیح کو پہچانے، پھر اس کو صرف اس کی عقل و دانش پر نہیں چھوڑا، اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی جن کے ذریعے صحیح و غلط اور حق و باطل کو خوب کھول کر واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری عقل کی ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی جیسے کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان کی ایک لمیٹیشن ہے، ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو آواز آ رہی ہے، دروازے کے پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس آواز کی بنیاد پر جو ہے نا تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ جی وہ آواز کس کی ہے، بلی کی آواز ہے کہ آدمی کی آواز ہے کہ عورت کی آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، حواس خمسہ سے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی عقل نہ ہو کام کرتی ہوئی تو وہ تو نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جی پیچھے بلی ہے کہ آدمی ہے کہ عورت ہے، عقل آج آگئی نا بیچ میں۔ اسی طریقے سے عقل کی بھی لمٹ ہے، عقل بھی ایک سرٹن لمٹ سے آگے نہیں فیصلے کر سکتی، نہیں حقیقت کو پہچان سکتی۔ وہ پھر کہاں سے ملتی ہے؟ وہ وحی کے ذریعے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور وحی جو ہے وہ کتاب اللہ اور رجال اللہ، ان کے واسطوں سے اللہ تعالیٰ نے وحی کو انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس پر شبہ ہو کہ ایک شخص جو واقعی میں اپنے کو حق پر سمجھتا ہو وہ غلطی پر ہو، پھر اس پر کیا الزام ہے؟ وہ معذور ہونا چاہیے کیونکہ اس کو اپنی غلطی کی اطلاع ہی نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و ہوش، پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم عطا فرما دی ہیں، جن کے ذریعے کم از کم اس کو اپنے اختیار کیے ہوئے طریقے کے خلاف کا احتمال اور تردد ضرور ہو جانا چاہیے۔ اب اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور جس غلط طریقے کو اختیار کر لیا تھا اس پر جمع رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے اس ایک پیراگراف سے جو ہے نا وہ آج کے زمانے کے بندے کو تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ کو دوسرے ذرائع سے ملتی رہی ہے تو پھر اس کی بنیاد پر اس کانسیپٹ کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دھیان والے ٹاپک کے اوپر بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، پے اٹینشن جو یار جس کہتا ہے، پے اٹینشن نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے۔ پھر جو ہے وہ فطرت کے اوپر بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس پیراگراف کو سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ البتہ جو شخص طلب حق میں اپنی پوری کوشش خرچ کر چکا ہو اور پھر بھی اس کی نظر صحیح راستے اور حق بات کی طرف نہ پہنچی، وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور ہو۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التفرقہ بین الاسلام والزندقہ زندقہ میں فرمایا ہے۔ زندقہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ تو بین الاسلام والزندقہ میں فرمایا ہے واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کتاب جو لکھی ہے، حدیث نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے، لیکن اس ٹائٹل سے جو ہے نا وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسلام اور زندقہ، ٹھیک ہے، یعنی الحاد اور جو صحیح دین ہے، ان دونوں کے درمیان فرق معلوم کرنا نا یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بڑا ٹیکنیکل قسم کا کیا فرق ہوتا ہے، یہ تو بہت، یعنی الحاد تو دھوکا ہوتا ہے نا، دھوکا، رائٹ، کہ وہ موڑ تروڑ کر کے جو ہے وہ آیات کے معنی اور حدیث کے معنی ان کو موڑ تروڑ کر کے جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے خاتم النبیین، خاتم النبیین ہے نا، اب یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹی، کیونکہ خاتم جو ہے وہ عربی زبان میں انگوٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ایک عام آدمی کو کیا پتا کہ جی یہاں پہ انگوٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تو خاتمے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو الحاد یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا اور بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا ٹاپک ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ عوام الناس جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی شخص نے پے اٹینشن کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے دین حق کی جو ہے وہ کوشش کری ہو کہ بھئی میں حق پہ رہنا چاہتا ہوں، میں جو بھی ہے اللہ آپ کے نزدیک دین حق ہے، آپ مجھے وہاں تک پہنچا دیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ تو مخلص ہے اس معاملے کے اندر، अब अल्लाह ताला किसी भी हिकमत की वजह से अगर उसको मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो उसी के बारे में हजरत ने यहाँ पे लिखा है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला फिर उसको माफ फरमा दे, बहरहाल पहुंचा ही देंगे वैसे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा भी तो है ना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो ऐसा अल्लाह ताला के सामने कोई बंदा पेश करे और अल्लाह उसको फिर मंजिल तक ना पहुंचाए तो ये भी तो अल्लाह ताला से वईद है ना, अल्लाह ताला की रहमत से वईद है। एनीवे बहरहाल उन्होंने उस प्रॉस्पेक्ट को भी कवर कर लिया यहाँ पर के बंदा मेहनत करता हो तो। चौथी आयत में इरशाद फरमाया कि ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से ना निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करते। तो जमाने जाहिलियत के अरब जैसा कि बैतुल्लाह का तवाफ नंगे होकर करने को सही इबादत और बैतुल्लाह का एहतराम समझते थे, इसी तरह उनमें ये रस्म भी थी कि अय्याम हज में खाना पीना छोड़ देते थे, सिर्फ इतना खाते थे जिससे सांस चलता रहे, खुसूसन घी दूध और पाकीज़ा गिज़ाओं से बिल्कुल इज्तनाब करते थे। कि उनके इस बेहुदा तरीक़ा कार के ख़िलाफ़ ये आयत नाजिल हुई जिसने बताया कि नंगे होकर तवाफ़ करना बेहयाई और सख्त बेअदबी है, इससे इज्तनाब करें। इसी तरह अल्लाह ताला की दी हुई पाकीज़ा ग़िज़ाओं से बिला वजह इज्तनाब करना भी कोई दीन की बात नहीं है, बल्कि उसकी हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हराम ठहराना गुस्ताखी और इबादत में हद से तजावुज़ करना है जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों की आलिमात सालिकात क्लास होती है उसी तरह कल रात को जो है वो आलिम सालिक भी एक क्लास होती है, तो उसके अंदर जो सूरह निसा की तफसीर चल रही है तो वहाँ पर ये बात भी आई थी कि नबी अलैहि सलाम ने जिस चीज़ को जैसे बताया ना तो उसको यानी पूरे शरह सदर के साथ और दिल की खुशी के साथ तस्लीम कर लेना ना, ये एक ईमान वाले के लिए लाजमी है। ठीक है, ला युमिनून हत्ता, अल्लाह ताला ने ये अल्फाज समझ रहे हैं, ये जब उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपको अपने मामलात में हकम ना बना लें। ठीक है ना, ला तो हक्किमू फी मा शजरा बैनकुम, ठीक है कि जब तक के आपको हकम ना बना लें। तो उसकी तफसीर में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने ये बात भी लिखी है जो कि यहाँ पर है। ठीक है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अगर फरमाया कि इस चीज इस तुम ना तकलीफ की हालत में जो है वो रुख्सत इस्तेमाल करो, ठीक है, और यानी रुख्सत का मतलब होता है कि आप जो है वो यानी आसानी का रास्ता इख्तियार कर लें बजाय इसके कि अपने आप को किसी तकलीफ में डालने के, आप अपनी आसानी का रास्ता इख्तियार कर लें, दीनी तौर पर आसानी का रास्ता इख्तियार कर, ठीक है। लेकिन आप ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं क्यों करूँ आसानी का रास्ता इख्तियार, मैं तो जो हूँ ना वो यानी अपने आप को मुश्किल में ही डालूंगा ताकि मुझे अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, ठीक है, ताकि मैं अल्लाह ताला को मैं ज्यादा खुश कर सकूं, ज्यादा सवाब हासिल कर सकूं, तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम को हकम बनाने के खिलाफ है। ठीक है, तो इस मौके के ऊपर रुख्सत का इख्तियार करना कर लेना ये अल्लाह ताला को पसंद है। ठीक है, तो वही बात फिर यहाँ पर भी रिपीट हो रही है कि जो अल्लाह ताला ने हलाल चीजें करी हैं, अब तुम नहीं नहीं मैं हलाल भी नहीं खाऊंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा। ठीक है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये काम किया तो आप कौन होते हैं जब ये काम ना करने वाले। ठीक है, अब उसके अंदर थोड़ी सी और भी तफसील थी कि जैसे किसी जायज़ वजह से अगर कोई अपने आप को हलाल चीज़ से रोकता है ना तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने जिक्र यानी डिस्कस किया है कि वो वाली सिचुएशन वो यानी अलाउड है अगर कोई जायज़ वजह से हलाल चीज़ से अपने आप को रोकता है तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल केस की बात हो रही है। तो इसलिए अय्याम हज में खूब खाओ पियो, हाँ इसराफ ना करो यानी फजूल खर्ची ना करो, हलाल गजाओं से बिल्कुल इज्तनाब करना भी इसराफ में दाखिल है। यानी अजीब, हलाल गजाओं से इज्तनाब करना ये इसराफ में दाखिल है, फजूल खर्ची। ठीक है, तो यानी अब ये किस तरह से फजूल खर्ची बनता है कि या तो ये कि भाई आप अगर इस तरह से करेंगे तो आप जो है वो क्या कहते हैं बीमार हो जाएंगे, तो बीमार जब हो जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा अपने ऊपर, तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये भी इसराफ ही बनता है कि अगर आप हलाल गज़ाओं से बिल्कुल इज्तनाब करें। और हज के असल मकासद और जिक्रुल्ला से गाफिल होकर खाने पीने ही में मशगूल रहना भी इसराफ में दाखिल है। ठीक है, जैसे आजकल माशाल्लाह जो वीआईपी, अब तो अल्लाह रहम पर करे हमारे ऊपर हज ही बंद हो गया, लेकिन पिछले साल तक जो हज का मामला होता था तो वीआईपी हज माशाल्लाह, और इतना खाना, इतना पीना, और जूसेस भी मिल रहे हैं और हर चीज़ ही माशाल्लाह। खैर, अल्लाह की नेमत ही थी, अल्लाह ताला फिर से वो नेमत अता फरमा दें, इसलिए कि उनके होते हुए ही हम इबादत करते हैं, उनके बगैर तो हमसे इबादत भी नहीं होती। ये आयत अगरचे जाहिलियत अरब की एक खास रस्म उरियानी को मिटाने के लिए नाजिल हुई है, जिसको वो तवाफ़ के वक्त बैतुल्लाह की तज़ीम के नाम पर किया करते थे, लेकिन आइमा तफसीर और फुकाहे उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि किसी हुक्म के किसी ख़ास वाक़े में नाजिल होने के ये मानी नहीं होते कि वो हुक्म सिर्फ उसी वाक़े के साथ ख़ास हो, बल्कि एतबार उमूम अल्फाज का होता है। जो जो चीज़ें उन अल्फाज के उमूम में शामिल होती हैं, सब पर यही हुक्म आयद होता है। ठीक है, तो अगर वो हुक्म आम है तो फिर वो हर ऐसी सिचुएशन जहां पर वो इल्लत मौजूद हो तो वहां पर वो हुक्म कायम होगा। नमाज में सतर पोशी फर्ज है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इस आयत से जमहूर सहाबा व ताबईन और आइमा मुश्तहिदीन ने कई अहकाम निकाले हैं। अव्वल ये कि इसमें जिस तरह नंगे तवाफ को मना किया गया है, इसी तरह नंगे नमाज पढ़ना भी हराम और बातिल है, क्योंकि हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब तवाफु बिल बैती सलातुन। इसके अलावा यानी जो काबतुल्ला का तवाफ़ है ना, तो वो नमाज के हुक्म में है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जोहर का वक्त हो जाएगा तो आप जोहर छोड़ करके तवाफ़ करते रहेंगे, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन तवाफ़ जिस तरह से बगैर वजू के नहीं किया जा सकता है, यानी नमाज जिस तरह बगैर वजू के नहीं पढ़ी जा सकती, तवाफ़ भी बगैर वजू के नहीं किया जा सकता। अलबत्ता नमाज के अंदर जो है वो यानी आप बातचीत नहीं कर सकते, वरना नमाज टूट जाएगी। ठीक है, और तवाफ़ के अंदर बातचीत कर सकते हैं, तवाफ़ टूटेगा नहीं, अगरचे कि ये अच्छी बात नहीं है कि तवाफ में बातचीत की जाए। तो कुछ अंदाज से देखा जाए तो तवाफ भी नमाज ही की तरह है। इसके अलावा खुद इसी आयत में, जबकि लफ्ज मस्जिद से जमहूर मुफस्सरीन के नज़दीक मुराद सजदा है। ठीक है, मस्जिद से मुराद, यानी पहले बात हो चुकी है ना कि सजदे का वक्त, तो बहालत सजदा और यानी की ममानियत खुद आयत में सराहत से आ जाती है। और जब सजदे में ममनू हुई तो रुकू और क्याम और कुरूद और नमाज के तमाम अफ़ाल में इसका लाजिम होना जाहिर है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ने इसको और भी वाज़ह कर दिया। एक हदीस में इरशाद है कि किसी बालिग औरत की नमाज बगैर दुपट्टे के जायज नहीं है, यानी बालों को छुपाने के लिए दुपट्टा इस्तेमाल होता है, तो बाल जो है वो सतर हैं, तो सतर को अच्छी तरीके से ऐसे छुपा लेना कि बिल्कुल भी नज़र ना आता हो, हत्ता कि कपड़ा जो है वो इतना बारीक भी ना हो कि उसके थ्रू नज़र आता हो, फिर भी नमाज नहीं होगी। इस वजह से ज़रा मोटा कपड़ा होना, या ये कि दो लेयर्स, पतले कपड़े की दो लेयर्स हो कम अज़ कम, तो वो लाजमी है। और मेरे ख्याल में आप सबको ये सारे मसाइल जो है वो अच्छी तरीके से पता ही होंगे। और नमाज के अलावा दूसरे हालात में भी सतर पोशी का फ़र्ज होना दूसरी आयातों रिवायात से साबित है, जिनमें से एक आयत इसी सूरत में गुजर चुकी है, या बनी आदमा कद अनज़लना अलैकुम लिबासें युवारी सौआतिकुम। ठीक है कि कर चुके हैं इसके ऊपर डिस्कशन हम। खुलासा यह है कि सतर पोशी इंसान के लिए पहला इंसानी और इस्लामी फ़र्ज है, जो हर हालत में उस पर लाजिम है। नमाज और तवाफ़ में बदरजह उला फ़र्ज है, ठीक है। नमाज के लिए अच्छा लिबास, दूसरा मसला इस आयत में यह है कि लिबास को लफ्ज जीनत से ताबीर करके इस तरफ भी इरशाद फरमाया गया है कि नमाज में अफजल व उला यह है कि सिर्फ सतर पोशी पर किफायत ना की जाए, बल्कि अपनी वसत के मुताबिक लिबास जीनत इख्तियार किया जाए। ठीक है, अब वसत के मुताबिक लिबास जीनत इख्तियार किया जाए, तो वैसे तो हजरत हसन अतान के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी आदत थी कि नमाज के वक्त अपना सबसे बेहतर लिबास पहनते थे और फरमाते थे कि अल्लाह ताला जमाल को पसंद फरमाते हैं, इसलिए मैं अपने रब के लिए जीनत व जमाल इख्तियार करता हूँ, और अल्लाह ताला ने फरमाया है खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन। मालूम हुआ कि इस आयत से जैसे कि नमाज में सतर पोशी का फर्ज होना साबित होता है, इसी तरह बकदर इस्तेताअत साफ सुथरा अच्छा लिबास इख्तियार करने की फजीलत और इस्तेहबाब भी साबित होता है। ठीक है ना, फजीलत और इस्तेहबाब, यानी अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो भी नमाज हो जाएगी, यानी ये फर्ज नहीं है लेकिन सवाब वाला काम है, इस्तेहबाब और अदब ये सारी चीजें इसकी वजह है। अच्छा, नमाज में लिबास के मुताल्लिक चंद मसाइल। तो तीसरा मसला इस जगह ये है कि सतर जिसका छुपाना इंसान पर हर हाल में और खुसूसा नमाज तवाफ में फर्ज है, इसकी हद क्या है? तो कुरान करीम ने इजमालन सतर पोशी का हुक्म देकर उसकी तफसीलात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ इरशाद फरमाया कि मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक, ठीक है, यानी नाफ भी उसमें कवर्ड हो और घुटने भी उसमें कवर्ड हो, ठीक है। तो ये फिर फुकाह में थोड़ा सा इख्तलाफ है इसके ऊपर कि ये घुटने जो है ना वो उसमें कवर्ड हैं कि घुटनों तक और घुटने उसके उससे बाहर हैं, लेकिन हमारे जो अनाफ के फुकाह हैं तो उनमें उनके नजदीक घुटने भी सतर के अंदर शामिल हैं। तो नाफ से लेकर घुटनों तक, और औरत का सतर सारा बदन, सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां और कदम मुस्तस्ना है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें खवातीन माशाल्लाह आलिमात भी मौजूद हैं। तो यानी औरत का ये तो मेरे ख्याल में किसी ने यानी कोई सोचने की बात नहीं है कि जी पूरा बदन सतर है और चेहरा जो है वो सतर नहीं है। चेहरा जो है वो हिजाब में आता है, सतर में नहीं आता, ठीक है। तो हिजाब और सतर अलग अलग चीजें हैं, और ये तफसीर के साथ मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह अहज़ाब की तफसीर के अंदर नकल किया है आया वो आयात हिजाब के, ठीक है, तहत। तो जैसे पिछली क्लास में भी बात हुई थी कि वहां पर जो अहकाम हिजाब का पूरा टॉपिक मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा है, ये हर खातून को जो है वो अच्छी तरीके से समझना बल्कि अपने याददाश्त में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो ये फर्ज भी है, दूसरा ये कि जितना आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक का इस्तेदार होगा उतना आप जो है फिर उसको अच्छे से आगे बयान भी कर सकेंगी। क्योंकि जैसे कि शायद आप में से भी अक्सर का बैकग्राउंड ऐसा हो कि पता ही नहीं था कुछ के सतर क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसी तरीके से हजारों लाखों औरतें मुसलमान ऐसी हैं कि जिनको नहीं पता कि सतर क्या होता है, ठीक है, और हिजाब क्या होता है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कम समझें और मौके की तलाश में रहें, जैसे ही मौका मिले अपने रिश्तेदारों में और अपने मिलने जुलने वालों में जो है वो इस बात को चलाएं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ इंटरेस्टिंग है साजिश ने कही है ना, वो ये है कि ये जो दोनों हथेलियां मुस्तस्ना है, ठीक है। तो अब जो आप नमाज पढ़ती हैं, ठीक है, खवातीन, तो हथेलियां मुस्तस्ना है, क्या खुला हुआ होता है उसमें? हथेलियां तो हम यानी हम हथेलियां किस चीज को कहते हैं? पाम्स को कहते हैं ना, पाम्स तो वो जो जो हाथ का जो जिससे यानी जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है हाथ का, ठीक है, तो उसको हम हथेली कहते हैं। लेकिन जब आप नमाज पढ़ती हैं तो जो हाथ का पीछे वाला हिस्सा होता है यानी बैक साइड जो हथेलियों का होता है, तो उसको किसी तरह से कवर करती हैं या उसको कवर कर सकती हैं? अगर करना चाहें भी तो क्या उसको है कोई कपड़ा चिपका करके कवर करेंगी, ठीक है। तो यानी जो बेसिकली जो जिसको कहते हैं हैंड्स, जिनको कहते हैं ना, यानी तो वो बेसिकली मुस्तस्ना होते हैं सतर से, ठीक है, और कदम भी जो है वो भी मुस्तस्ना है सतर से। तो नमाज में आप ये तीनों चीजें जो है ना वो खोल करके नमाज पढ़ती हैं, लेकिन चूंकि गैर महरम से पर्दा भी फर्ज है, ठीक है, तो इस वजह से अगर किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रही हो जहां पर कि गैर महरम का गुजर होता हो, ठीक है, जैसे घर के बाहर किसी मजबूरी से पढ़नी पड़ रही है नमाज, तो वहां पर भी जो है वो चेहरे को भी छुपाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हिजाब जो है वो गैर महरम के सामने फर्ज होता है। उसी तरह से अगर इवन नमाज में आपको अंदाजा हो जाए कि भाई कोई गैर महरम दाखिल हो गया है, ठीक है ना, पहले से आपका कोई इरादा नहीं था कि गैर महरम के दाखिल करने का, लेकिन वो हो गया दाखिल भी किसी वजह से, जैसे आजकल घरों के अंदर हाउस बॉयज काम करते हैं तो आप पर्दा करती हैं, लेकिन किसी वजह से गलती से कुछ हो गया, तो फिर ऐसे में फिर नमाज के दौरान ही जो है ना वो अपने हाथ से जो है वो अपने चेहरे को कवर करती हैं खवातीन, ठीक है, यानी कोई दुपट्टे वाला हाथ जो होता है तो उसको इस तरह से। روایات حدیث میں یہ سب تفصیل مذکور ہے مرد کے لیے. خیر یہ بہرحال میرے خیال میں کچھ غلطی بھی کر گیا ہوں اس معاملے میں, تو اس وجہ سے اس کو اگنور کر دیں گے. آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس کو. ہتھیلی وغیرہ کی جو ٹاپک ہے نا, اس کو میرے خیال میں حذف کر دیں اس ڈسکشن سے. روایات حدیث میں یہ سب تفصیل مذکور ہے. مرد کے لیے ناف سے نیچے کا بدن یا گھٹنے کھلے ہوں تو ایسا لباس خود بھی گناہ ہے اور نماز بھی اس میں ادا نہیں ہوتی. اسی طرح عورت کا سر, گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہو تو ایسے لباس میں رہنا خود بھی ناجائز ہے اور نماز بھی ادا نہیں ہوتی. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو تو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ ذرا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں یعنی اپنے گھر کے اندر جو محرم مرد ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ عورت کو اپنے سر کو تو نہیں ڈھکنا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا نیکی کے فرشتے نہیں آتے, تو یہ ایک حدیث بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے جو نیکوں کے گھرانے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سر کو ڈھک کر کے رکھیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اندر. ٹھیک ہے نا, اپنے یعنی یا تو اکیلی ہیں اپنے گھر کے اندر یا محرم مرد ہیں. ٹھیک ہے, چاہے شوہر ہے, یعنی شوہر تو خیر شوہر ہوتا ہے, لیکن بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے اور سسر ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے سامنے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ سر کو کمپلیٹلی کور یعنی کور کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو محرم ہے. لیکن یہ آداب کے اندر سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ دوپٹہ بھی جو رکھتے ہیں نا سر کے اوپر, تو وہ دوپٹہ بھی جو ہے وہ سر کو کمپلیٹلی تو کور نہیں کر رہا ہوتا نا. اکثر جو ہے وہ ذرا آدھا سر کھلا ہوا ہوتا ہے یا کچھ, یعنی وہ اسکارف کی طریقے سے ایسی ٹائٹ چیز تو آپ پہن کر کے ہر وقت گھر میں نہیں رہ سکتی نا. اس وجہ سے اس حدیث کو جو ہے نا وہ سمجھنے میں پھر آداب کی ہی اہمیت کی لیول تک پھر اس کو. باقی اگر آپ میں سے کسی کو اس کے زیادہ کچھ اور علم ہو تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا, ساتھ اس کے بھی علم اضافہ ہوگا. لیکن میں نے بھی معلوم کیا کچھ خواتین سے بھی اور آپ کی والی سے بھی, تو اسی حد تک ہی اس کو سمجھا جاتا ہے. عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدم جو سطر سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں, اس کے یہ معنی ہیں کہ نماز میں اس کے یہ اعضاء کھلے ہوں تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر محرموں کے سامنے بھی وہ بغیر شرعی عذر کے چہرہ کھول کر کے پھرا کرے. اچھا, پچھلے پیراگراف کے اندر ایک اور بھی جو بات تھی کافی اہم, وہ یہ کہ عورت کا سر, گردن یا بازو یا پنڈلی. ٹھیک ہے, بازو تو وہ ہو گیا نا کہ جی آپ نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پنڈلی کھلی ہوئی ہو تو یہ چیز جو ہے نا یہ تو ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اب انفارچونیٹلی جیسا کہ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ عربوں میں نا وہ اس کو جو ہے نا وہ سطر کی لمٹ تک لے کے جاتے ہیں لباس کو. ٹھیک ہے, کہ جی محرم کے سامنے جو ہے نا وہ تو جو محرم کے سامنے والا سطر ہوتا ہے تو چونکہ بس اس کو چھپانا ضروری ہے, تو اب ان کے گھروں کے اندر انفارچونیٹلی جو ہم تک خبریں پہنچتی ہیں بہت سی, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ پھر نہیں یعنی ان کے یہاں لباس وہی پہنے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر پہنتی ہیں. تو وہی لباس جو ہے نا وہ عربوں کے گھروں کے اندر عورتیں پہنتی ہیں. ٹھیک ہے, جس کے اندر بازو بھی کھلے ہوئے ہیں اور پنڈی بھی کھلی ہوئی ہے اور گردن بھی کھلی ہوئی ہے اور نہ جانے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہمارے گھروں کے اندر بھی اس طرح کے لباس جو ہیں وہ پہننے شروع کر دیے لوگوں نے. تو اس میں ایک یعنی بڑی تفصیل ہے, اس کو جو ہے وہ میرے خیال میں اس کلاس کے اندر تو کور نہیں کر سکتے, لیکن یہ ایک ٹاپک ہے جس کو کہ خواتین جو ہیں وہ ذرا توجہ دے کر کے نا اس کو تھوڑا کھولیں اس ٹاپک کو. ٹھیک ہے, اپنے بڑوں سے پوچھیں, استانیوں سے پوچھیں, ٹھیک ہے, باجیوں سے پوچھیں اور اس کو کلیئر کریں کہ جی گھر کے اندر کیسے کیسے لباس میں رہ سکتے ہیں یا کیسے لباس میں کس صورت میں رہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی گھر کے اندر جو ہے وہ صرف شوہر کے ساتھ رہتی ہے بیوی, ٹھیک ہے, مطلب شوہر بیوی بس. ٹھیک ہے, اور بچے اگر ہیں بھی تو بہت چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پر شوہر صاحب جو ہیں وہ اپنے کسی اور مجبوری کی وجہ سے بیوی کو چاہتے ہیں کہ جی ذرا ویسٹرن کلوتھنگ کے اندر رہے وہ. ٹھیک ہے, تو اب اس سچویشن کے اندر بیوی کے لیے جو ہے وہ ویسٹرن کلوتھنگ کے اندر رہنا, ٹھیک ہے, اب وہ شوہر کی وجہ سے ایک الگ سچویشن ہو گئی ہے نا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں بھی, بس ان کو اپنا خود شوق ہے कि जी जैसे कि वो ड्रामों के अंदर और सीरियल के अंदर जो है वो औरतों को कपड़े पहना हुआ देखती हैं, तो वो चाहती हैं कि चलो मैं बाहर नहीं पहन सकती, घर के अंदर तो पहन सकती हूँ ना, तो अब वो इस वजह से जो है वो वेस्टर्न क्लोथिंग जो है वो घर के अंदर पहनना शुरू हो गई, तो ये चीज़ जायज़ नहीं होगी, ठीक है, यानी ये नाजायज़ में आता है, क्लियर। ऐसी कैप ऐसी बासानी मिल जाती है 2 रियाल की जो बालों को कवर रखती है और किचन में मसला नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये हुक्म तो फरीज़ सतर के मुतालिक है जिसके बगैर नमाज ही नहीं, नमाज ही अदा नहीं होती, और चूंकि नमाज में सिर्फ सतरपोशी ही मतलूब नहीं बल्कि लिबास से जीनत इख्तियार करने का इशारा है, इसलिए मर्द मर्द का नंगे सर नमाज पढ़ना या मूंदे या कोहनियाँ खोल कर नमाज पढ़ना मकरूह है, ख्वा कमीज ही नीम आस्तीन हो, यानी जैसे बनियान वगैरह पहन करके जो है वो नमाज पढ़ना शुरू हो गया आदमी, या आस्तीन चढ़ाई गई हो, चढ़ी हुई आस्तीन, बहरहाल नमाज मकरूह है, ठीक है। तो अब ये जो है वो दीनदार तबके के अंदर ना ये कराहियतें समझी जाती हैं, और जो दुनियादार तबका है तो वहां पर तो पूरा का पूरा मिजाज ही उलट गया, ठीक है, कि भाई हाफ स्लीव जो है वो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, ठीक है, निमा और आस्तीनों को चढ़ाना कोई इसके अंदर कराहियत नहीं है, तो वहां तो बिल्कुल ही डेफिनेशन ही जो है वो रिवर्स हो गई है। लेकिन डेफिनेशन हम दुनियादार तबके से नहीं लेंगे बल्कि हम दीनदार तबके से लेंगे, ये हमारा फैसला है, तो इस वजह से हमने इन चीज़ों को मकरूह ही समझना है। इसी तरह ऐसे लिबास में भी नमाज मकरूह है जिसको पहनकर आदमी अपने दोस्तों और आवाम के सामने जाना काबिले शर्म व आर समझे, जैसे सिर्फ बनियान बगैर कुर्ते के, अगरचे पूरी आस्तीन भी हो, या सर पर बजाय टोपी के कोई कपड़ा या छोटा दस्ती रूमाल बांध लेना, कि कोई समझदार आदमी अपने दोस्तों या दूसरों के सामने इस हैयत में जाना पसंद नहीं करता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जाना कैसे पसंदीदा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मर्द जो हैं वो हमने बचपन में देखा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम नजर आता है, लेकिन जब हम छोटे थे तो ये हमारे बड़ों में बहुत ज्यादा, कि वो रुमाल होता था, अच्छा उस जमाने में टिश्यू पेपर जो थे ना बड़े महंगे होते थे, हर कोई टिश्यू पेपर जो है ना वो अफोर्ड नहीं करता था, तो हर एक के पास एक रुमाल जरूर होता था, चाहे तौलिए की शक्ल का हो चाहे जो है वो ऐसे ही रुमाल हो, ठीक है, तो वो रुमाल जो है ना वो सर के ऊपर टोपी की तरह से कुछ तरीके से वो बांध दिया करते थे, ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन था। अब जरा अल्हम्दुलिल्लाह टोपी का रिवाज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अगर कोई पहनता नहीं भी है तो भी जेब में रख लेता है वो नमाज के वो टोपी पहन लेता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट ये पैराग्राफ खत्म कर लूँ फिर आपका पढ़ता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जाना कैसे पसंदीदा हो सकता है, सर मूंढे कोहनियाँ खोल कर नमाज का मकरूह होना आयत कुरानी के लफ्ज़ जीनत से भी मुस्तफाद है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्रीहात से भी, ठीक है, यानी जो फुकहा ने हुक्म लगाया मकरूह का तो वो इस आयत कुरानी से उसको इस्तखराज किया उस हुक्म का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्रीहात से भी, कि भाई ये चीज़ें जो है मकरूह है नमाज के लिए। चले आपने क्या लिखा है कि सर ढकने वाली हदीस के बारे में एक गैर मुकल्लद खातून से सुना कि ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए वो एहतमाम नहीं करते, इवन तिलावत कुरान के दौरान भी सर नहीं ढकते। हाई पहली बात तो अगर ये है भी ज़ईफ़ तो भी ज़ईफ़ हदीस जो होती है वो मौजू तो नहीं होती ना, झूठी तो नहीं होती ना, उनके यहाँ तो खैर ज़ईफ़ हदीस के साथ जिस किस्म का सलूक किया जाता है तो फिर तो उनकी बात उस हिसाब से तो ठीक ही है कि यहाँ भी ज़ईफ़ हदीस तो उनके नज़दीक मौजू हदीस जैसी होती है, तो उनका मामला तो उनकी तरफ, लेकिन हमारे मामले में यह है कि कुरान के अदब के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो कोई वो नहीं है हमारे यहाँ, बल्कि इससे वो शायद आपने साजिश के घर वालों से वो बात भी सुनी होगी कि अमेरिका में एक शादी में जाना हुआ तो वहां जा करके इन्होंने देखा कि जी कुरान की तिलावत हो रही है, यानी दीनदार अरब थे वो, बल्कि अरब भी नहीं थे हिंदुस्तानी थे, लेकिन अरबों से उनका बहुत ज्यादा उठना बैठना था, तो वो एक औरत एक लड़की तिलावत कर रही है और उसका लिबास ही पूरा नहीं है, सर तो दूर की बात उसका लिबास ही पूरा नहीं है और इस तरह से वो तिलावत करे चले जा रही, तो इन लोगों को तो जाहिर है वो बात बहुत बुरी लगी। लेकिन जहां तक घर के अंदर मुस्तकिलन जो है वो सर को ढक करके रहने वाली बात है, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि इसको जरा आपस में आप लोग डिस्कस कर लें। जिस तरह आपस आयत का पहला जुमला जाहिलियत अरब की रस्में और यानी को मिटाने के लिए नाजिल हुआ मगर उमूम अल्फाज से और बहुत से अहकाम व मसाइल से मालूम हुए, इसी तरह दूसरा जुमला कुलू व शरबू वला तुसरफू भी اگرچہ جاہلیت عرب کی اس رسم کو مٹانے کے لیے نازل ہوا کہ ایام حج میں اچھی غذا کھانے پینے کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن عموم الفاظ سے یہاں بھی بہت سے احکام و مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے، اس لیے کہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اگر کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیں ورنہ. ٹھیک ہے، چلو آخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم.